इस बात कहते हैं याद रखो, चैतन्य महाप्रभु से ये सब संप्रदाय चलेगी, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो इसका मतलब है जो महाप्रभु से ही मंत्र निकला और महाप्रभु जी को हुए 500 वर्ष हुआ, तो ये 500 वर्ष पहले से ही ये सब आराध्य आराधना और ये सब कुछ 500 वर्ष पहले, इसके आगे नहीं था। तो अनित्य हो जाता है। गोपाल मंत्र हमारे संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, बस भैया यदि मान लिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो ये आधुनिक संप्रदाय हो जाएगा। तो पहले महाप्रभु जी ने गोपाल मंत्र ग्रहण किया गुरु जी से। ये प्राचीन मंत्र है ना नया मंत्र है, महाप्रभु जी ने आविष्कार किया इस मंत्र, ब्रह्मा जी के समय से है ये। ब्रह्मा जी को कृष्ण ने ये मंत्र दिया था, सरस्वती जी ने दिया, बहुत पहले से ये मंत्र है। महाप्रभु जी ने किसी को शिष्य किया ऐसा कोई प्रमाण है? मंत्र दिया हो किसी को? किसी को उन्होंने मंत्र नहीं दिया। यदि मान ले कि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो मध्वाचार्य रामानुज की श्रेणी में आ जाएंगे, भगवान कहां रहे? कृष्ण जबकि और रामचंद्र किसी संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अवतारी होकर के संप्रदाय जैसे प्रवर्तक रूपी साधारण कार्य यदि महाप्रभु जी करें तो उनकी भगवत्ता क्या है? ये तो भक्तों का काम है, शक्ति का काम है, ये भगवत्ता का काम नहीं। इसलिए याद रखना, आजकल ये सब चल रहा है अरे महाप्रभु जी ने नया संप्रदाय किया, नहीं, कोई नया मंत्र उसमें नहीं है। कृष्ण के अतिरिक्त तो नया किसी को आराध्य माना नहीं माना। भागवत में जिस आराधना की बात है वो वही महाप्रभु जी ने कहा, नई बात कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बात नई जो शास्त्रों में थी उसको प्रकाश किया, क्या? आराध्य भगवान ब्रजे सतमय सद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना बजुबधु वर्गेण कर। ये पूरा श्लोक में चार बातें, ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर ही आराध्य है, गोपियों की वृंदावन जैसे हैं वैसे धाम भी आराध्य, वृंदावन को छोड़कर के कृष्ण आराध्य नहीं, वृंदावन में रहने वाले कृष्ण आराध्य। गोपियों की आराधना सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर के कोई आराधना नहीं, इसके पहले किसी ने ये नहीं कहा कि गोपियों की आराधना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसी प्रेम को उन्होंने जगत में प्रदान किया, ये भी बात नहीं है, नई नहीं है। इसके पहले गौर अवतार में उन्होंने ये सब चीज दी, इसलिए महाप्रभु जी किसी प्रकार से संप्रदाय प्रवर्तक नहीं है। महाप्रभु जी ने सूत्र दिया, जीव गोस्वामी ने उसकी प्रतिष्ठा की, उसका प्रचार किया, उसके युक्ति प्रमाण जो कुछ है सब जीव गोस्वामी ने दिया। महाप्रभु जी ने कहा जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाभेद, इसके बाद में और कुछ नहीं, अव्यय ज्ञान परतत्व ब्रजेंद्रनंदन, बस इतना ही कहा। और इसके लिए शास्त्रों से प्रमाण युक्ति तर्क इत्यादि की अवतारणा हमारे जीव गोस्वामी ने, अब पीछे से जो बाकी रहा वो बलदेव विद्याभूषण ने, ये सभी सांप्रदायिक रहस्य सब समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसके बाद में निम्बाकाचार्य जी आए, राधा कृष्ण की तो बात कही, ब्रज की भी बात कही, किंतु स्वकीय भाव का ही उन्होंने प्रचार किया, रुक्मिणी और कृष्ण की बात कही और आगे नहीं वो बोले। पीछे से महाप्रभु के विचारों से प्रभावित होकर के पीछे से उन लोगों ने इस विचार को राधा जी को रुक्मिणी के बदले राधा जी को किया, किंतु विचार को बदल नहीं करते, उनके जितने भाव हैं वही। यदि तो यही हरवंश जी, तो वो तो महाप्रभु के विचारधारा के ही एक अंश है, उन्होंने और वो भी सब किया बाद में ही देखा, और ये महाप्रभु से पीछे है, महाप्रभु जी के पहले ये सब विचार नहीं, महाप्रभु जी ने इसको पहले प्रचलन किया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट ये सब चीजें हैं, किंतु देखने के लिए नेत्र लोगों को महाप्रभु जी ने दिखलाया, और पीछे से जीव गोस्वामी ने इस चीज को और स्पष्ट किया, रूप गोस्वामी ने स्पष्ट किया। रूप गोस्वामी के जो विचार हैं, सनातन गोस्वामी के जो विचार हैं, उन्होंने भक्ति गोस्वामी सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विशेष करके विदग्ध माधव और ललित माधव में उन्होंने स्पष्ट किया। ललित माधव ये वृंदावन का चरित्र है या द्वारका का है? विदग्ध, अरे जहां पर कृष्ण विदग्ध नायक है वहां पर विदग्ध, कहां पर विदग्ध नायक है? अरे सुन, विदग्ध जहां पर है वो ब्रज का, ललित माधव, ललित माधव माने वहां पर वो भाव नहीं,
ये ललित नायक नहीं,
तो वहां पर द्वारका का जिसमें चार अध्याय तक अंक तक ब्रज की लीला का वर्णन करके और पांच से लेकर के दस पांच अध्याय में द्वारका के लीला का वर्णन, वो है ललित माधव। इन सब ग्रंथों में रूप गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से स्वकीय और पारकीय का भेद इत्यादि दिख रहा है। रूप गोस्वामी के अनुगत लोग पारकीय भाव के ही, हम भक्ति विनोद ठाकुर जी भी स्पष्ट, उनका कोई स्वकीय में नहीं जाएगा रूप गोस्वामी का विचार, और विशेष करके रूप गोस्वामी का अनुगत होने पर वो माधुर्य रस में ही जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, उसको रुचि नहीं होगी। रूप गोस्वामी का नाम सुना और उनके विचारों को थोड़ा सा सुना तो कभी वह शांत दास्य बात्सल्य इत्यादि में सत्य में वो नहीं जाए, वो उधर ही जाए, उसकी रुचि होगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी का अब जीव गोस्वामी जी उनके प्रधान रूपानुग वैष्णव, वो और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कोई शंका और कोई संदेह नहीं, वो तो स्पष्ट रूप से सब परकीय भाव के ही समर्थक हैं, और लिखते भी खोल करके जो रूप गोस्वामी भी नहीं जो लिखा उसको भी उन्होंने लिखा। जीव गोस्वामी के आशय को समझना बड़ा भारी कठिन है। जीव गोस्वामी से कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं पहले में बाद में जो दुनंदन आचार्य एक हो गए हैं, जीव प्रभु शिक्षा शिक्षित श्रीनिवास आचार्य प्रभु, जीव गोस्वामी के शिष्य ही रखो श्रीनिवास आचार्य, और कौन है नरोत्तम ठाकुर जी श्यामानंद, ये तीनों ही परकीय भाव के मानने वाले, इसलिए उनके शिष्यों से समझा जाएगा जैसे जीव गोस्वामी ने जो शिक्षा दी उसी का प्रचार किया, जिन्होंने जो प्रचार किया वही गुरु जी का मत प्रचार किया, इसलिए तीनों के विचार से बचे होंगे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के ज्येष्ठ कन्या हेमलता ठाकुरानी और उनके शिष्य जदुनंदन दास ठाकुर अपने एक पुस्तक करणानंद ग्रंथ में लिखा है, यही सब निर्धार करी सिद्धार्थ गोसाई नियम करी कुंड तिरे बसिला तथा, ये वर्णन कर रहे हैं करणानंद ग्रंथ में, कौन जनुराचार्य, ऐसा विचार करके कि महाप्रभु जी की विचारधारा रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किया है भक्त गोस्वामी सिंधु उज्ज्वल निर्गण है, ऐसा विचार करके कुंड के तिरे रह करके भजन कर स्वामी कृष्णदास आर गोसाई लोकनाथ उनके साथ में कौन थे कृष्णदास कविराज और लोकनाथ गोस्वामी इनकी उम्र अधिक थी। दीवानी की कृष्ण कथा सदा अविरत सच समय कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत की आलोचना अनुशीलन में इनका जाता था। हेनय समय ग्रंथ गोपाल चंपू नाम सवय मिली अश्वेय सदा अभिराम गोपाल चंपू को हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी देखा और इसका आस्वादन करते यदि स्वकीय का ये ग्रंथ होता तो कभी भी रघुनाथ दास गोस्वामी आंख बंद करके भी नहीं देखते, इसका सबसे प्रमाण है। और इनकी बात भी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत जन्नमा देवी के हेमलता ठाकुरानी के ये शिष्य है। हेमलता ठाकुरानी माने शिवाचार्य जी गोस्वामी के समसामयिक और उनसे शिक्षित है शिष्य हैं। हिनई समय गोपाल जम्पू नाम समय मिली आश्वाद सदा विधान आश्वाद दिया चित्ते अति आनंद उल्लास इनको देख करके और ग्रंथ को पढ़ करके बड़ा बारिश उल्लास उनको हुआ। अत्यंत दुरूह की बात श्लोकर अभिलाष दुरूह दुरूह माने कठिनता से समझ में आने वाले बाच्यर्थ बुझे तांस्व की आ बोलिया ग्रंथ की इसी में सौंदर्य और माधुर्य है। ऊपर से देखने में एक भीतर से एक ये ग्रंथ की विशेषता है। ऊपर से देखने में स्वकी भीतरे अर्थ मात्र केवल पर किया है भीतर में सी जीव गंभीर हृदय ना बुझिया बहु लोग व्याख्या नहीं स्वकिया बन लोग उनका समझ नहीं पाते इसलिए उसको समझने कारण स्वकिया करते हैं। ग्रंथ है मर्मार्थ बुझाए जनो पर ग्रंथ का मर्म जो अर्थ है वो पर किया है। आनंदे निमग्न सभे तहां अश्वा दिया चंपू ग्रंथ मर्म जानी गोसाई कविराज गोस्वामी ने नित्य लीला स्थापन लिखिला ग्रंथ समाज गोपाल चंपू नाम ग्रंथ महासु नित्य लीला स्थापने जाहे वज्र सपूर रसपुर शब्द कहे नित्य पर किया रसपुर माने क्या नित्य पर किया हृदय धरह तुम्हें जतन करिया इसका किया है और भी जीव गोस्वामी के ग्रंथों को देख करके किया वो बचीभूत हो सकते हैं। मो विषय गोपी गणेश उपपति भाव जोग माया करीबे एक आपन प्रभाव इन्होंने भी जोग माया लिया है। जीव गोस्वामी ने भी कहा है जोग माया प्रत्ययित भाव माया प्रत्ययित भाव माने जोग माया के द्वारा आमी हो ना जाने गोपीगण कृष्ण कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता गोपियां भी नहीं जानती दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन धर्म छाड़ी रागे दुहे करे मिलन धर्म को छोड़ करके दोनों प्रेम से मिलते हैं जहां प्रेम का ही अधिक मर्यादा है कभू मिले कभू ना मिले दैवर घटन, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। यही सब रत्न जात करीब आसपास यही बारे करीब सब भक्त र प्रसाद ब्रजन निर्मल राग सुनी भक्त बन राग मार जय भजे जन छाड़ी धर्म कर। इसको सुन करके जो साधक भक्त हैं यदि थोड़ी सी भी उनको श्रद्धा है तो क्या करेंगे, राग मार के भजे जैनो छाड़ी धर्म कर, जो सुनेगा वैसा ही करेगा। इसीलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा या रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा अथवा भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ने ग्रंथ, महाप्रभु के भाव के अनुसार में सभी भगवान का भजन करें। स्वकिया परकिया रूपे द्विविध संस्थान परकिया भावे अति रसर उल्लास ब्रज बिना यहाँ अन्यत्र नहीं बात, ब्रज को छोड़कर के ये कहीं नहीं है। कौन ब्रज में, नित्य गोलोक के अंदर में जो वृंदावन है वहां छोड़कर के और कहीं नहीं है, बैकुंठ में नहीं है, द्वारका तक में भी नहीं है। इसका अर्थ लगा देते हैं कि अप्रकट लीला में ही नहीं है, केवल ये गोकुल की लीला प्रकट लीला नहीं है, यह गलत है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जी गोस्वामी ने जो कहा है उनको संक्षेप में बतला रहा है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी दोनों की मीमांसा करेंगे, बहुत ही सुंदर चीज। ये कहते हैं जी गोस्वामी जी पांच सात बातें कहते हैं, नित्य लीला में परकीय भाव कभी संभव नहीं है। जब वहां पर जैसे यशोदा जी का कल बतलाया था ना, यशोदा जी का कृष्ण पुत्र है, अभिमान के द्वारा पुत्र है, वहां पर कृष्ण का जन्म और ये सब नहीं, ऐसे यहां पर भी वहां पर विवाह नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों, वहां पर तो जन्म तो होता नहीं तो विवाह क्या होगा, कोई लड़की होगी छोटी होगी फिर बड़ी हो जाएगी विवाह के योग्य होगी तब फिर, अरे कहां तो नित्य कृष्ण के परिकर लोग हैं, राधा जी के परिकर हैं, और जो साधक हैं वो प्रकट लीला में जन्म लेकर के वहीं पर साधन से सिद्धि करके उनका कषाय सब दूर होकर के तब वहां पर जाएंगे नित्य लीला में, साधारण वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर बस वही भाव है। और ये भाव चित्र कैसे रहेगी, कृष्ण की जन्म लीला नहीं है, पवंड लीला नहीं है, वो दुखल वाली लीला नहीं है, ये सब क्या अनित्य लीला है, नहीं, भावना के द्वारा अभिमान के द्वारा ये सब काम ये होता है। मैं यशोदा जी का नंद बाबा का पुत्र हूं अभिमान, वैसे ये पार्थिव का भी अभिमान नित्य अभिमान हुआ है, उसी के द्वारा सब होता है। जिस प्रकार से ब्रह्म मोहन लीला में लीला माया द्वारा है, तत् ब्रह्मा ने देखा जी सारी ये तो मेरी माया नहीं, बलदेव जी ने देखा जी मेरी माया नहीं, तो ये किसकी माया है, कृष्ण की माया, कृष्ण की माया कौन सी, जोग माया की, इसलिए जोग माया के द्वारा ये अभिमान उनमें सब। जैसे कोई शिष्य आता है गुरु जी उसको दीक्षा देते हैं, अब उस दीक्षित व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्या बतलाएगा, यदि वो कहता है अपने पूर्व पिता का नाम तो लोग हंसते हैं, ब्रह्मचारी लोग या सभी लोग जो जानते हैं हंसते हैं, जैसे इसको इतना ज्ञान नहीं है कि अब गुरु ही मूल पिता है, वही पिता हो जाता है। यदि इस परमार्थ राज्य में ही यहीं पर साधक जीवन में भी कुछ नई सिद्धि होने पर भी अभिमान के द्वारा हम गुरु को पिता से भी बढ़ करके मान लेते हैं, पिता परम पिता के रूप में, तो उस जगत में क्यों उन्होंने अभिमान से काम होगा, ये अभिमान है किसी के द्वारा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं, जन्म से हैं न कि मरने के बाद है न कब है, जब उनको पद मिला तो उनको अभिमान हो जाता है कि मैं राष्ट्रपति, और उसी के अभिमान में सब काम करते हैं, ये सब अभिमान का चीज है। इसलिए कृष्ण लीला में वही अभिमान नित्य होता है, उसी के द्वारा स्वकीय परकीय इत्यादि की भावना होती है। श्रृंगार रस जगत में, ये कहते हैं जगत में श्रृंगार रस अत्यंत निंदनीय है और पर जगत में वही रस सबसे श्रेष्ठ है। उस जगत की ये छाया है, इसलिए छाया कैसी पड़ती है, उल्टी होती है। निकट की चीज दूर और दूर की चीज निकट पड़ती है। जैसे छाया में पैर से छाया लगी रहती है और सिर कितना चला, कहां चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। दाहिनी आंख बाएं, बाएं आंख दाहिने देखेगी, उल्टी देखेगी। उसी तरह से ब्रज में जो सबसे श्रेष्ठ चीज है गोलोक वृंदावन में, वो यहाँ पर सबसे उन्नत और यहाँ की सर्वोन्नत चीज वहां पर सबसे निकृष्ट है। वहां पर शांत रस सबसे यहाँ पर इस जगत में श्रेष्ठ है। यदि आप किसी से कुछ न मांगे और आंख बंद कर दीजिए, मौनी जीवन भर रहिए, किसी से कुछ मत मांगिए, ब्रह्मचर्य रहिए, ये सबसे बड़ा साधु, असली साधु यही है। जो मांगने पर भी नहीं लेता ना, तो उसको सभी लोग जा करके देंगे। अभी बैठ जाइए, कोई आप लोगों में से या मैं बैठ जाऊंगा, बातचीत करना बंद कर दूं, केस कटाना बंद कर दूं, हंसना बोलना चलना सब बंद करो, कोई ले आया ना कुछ नहीं लो, यही सिद्ध महात्मा। भले ही भगवान से कोई संबंध हो नहीं, हम लोगों ने वहां गोवर्धन में एक महात्मा जी हैं, अब नौ करीब करीब 98 वर्ष या 100 वर्ष की उम्र हो गई, बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, पैसा पैसा नहीं देते। सब लोग यहां तक कि राष्ट्रपति उनके दर्शन करने के लिए, जो कृष्ण की कथा करता है, सब समय हरिनाम करता है और भावने के साथ, वो बड़ा साधु है ना, कि नहीं बोलना ही साधुत्व है। कुछ नहीं लेना ये साधुत्व है, जो कुछ नहीं लेते या किसी की चीज को लेकर के भगवान की सेवा में लगा दें, उसका कल्याण कैसे हो, आदमी नहीं। इसलिए साधुत्व क्या है, कृष्ण नाम के प्रति उनका कितना आदर है और कृष्ण के चरणों में कितनी उसकी ममता है, इस पर निर्भर करता है भक्ति। कृष्ण के चरणों में ममता नहीं है और मौन भी है, सब कुछ है, पैसा भी नहीं लेते हैं, पैसा तो जानवर भी नहीं लेते हैं, लेते हैं तो बड़े हो जाएंगे, वो भी तो नहीं बोलते हैं, इसलिए बड़ा नहीं हो जाएगा। कृष्ण के चरणों में ममता कितनी है, उनका नाम सुनकर के चित्त किसका द्रवित हो जाता है, आंखों में आंसू बहते हैं, बहने लगते हैं, ये साधु। आप लोग वैसे मत जाएंगे, उधर में मत जाएंगे, साधु उनको किन को मानेंगे, कृष्ण नाम में किन की जितनी रुचि है, उससे भी अधिक राधा जी में है। तत्व से उस चीज को जानते हैं, सब समय हरिनाम कीर्तन करते हैं, कहीं कलयुग का यही धर्म है ना, ये सब विचार करके सब भक्त को मानेंगे जी ये भक्त हैं, अन्यथा भक्त नहीं है। जो अपने लिए भजन करते हैं ना, वो स्वार्थी हैं। प्रायेण देव मनुया, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मैं उनको साधु नहीं समझता, साधु कौन है, जो पतित जीवों को, हम जैसे लोगों को भी उद्धार करके कृष्ण के चरणों में लगा दिए हैं, वो साधु। आज गुरु जी हम लोगों के नहीं रहते, हजारों हजारों आदमी, लाखों लोग आदमी विश्व के सर्वत्र प्रचार नहीं होता तो कैसे कृष्ण को जानते, इसलिए ये लोग साधु। तो कहते हैं श्रृंगार किसको कहते हैं, श्रृंगम, श्रृंग से श्रृंगार, समस्त रसों का जो श्रृंग है, सबसे उन्नत है, उसको श्रृंग कहते हैं। किंतु इस जगत में शांत रस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उस जगत में, किंतु उस इस जगत में रहते हुए भी जो उस जगत में रहते हैं वो इन चीज को समझेंगे, उस जगत में रहते हुए भी उसकी अनुभूति लेकर के इस जगत में रहते हैं, किंतु इस जगत में कुछ नहीं करते, वो लोग यथार्थ, वो लोग सिद्ध है। रूप गोस्वामी इत्यादि इस जगत में रहते हुए भी उस जगत के व्यक्ति हैं। नाटक अलंकार इत्यादि शास्त्रों में भी औपपत्य की निंदा की गई है। कृष्ण ने स्वयं कहा है अस्वर्ग्यम और जसस्य फल्गु कृष्ण भयावहम जुगुप्सितम सर्वत्र ही औपपत्तम कुलस्य। कुलस्त्रियों के लिए औपत्य भाव पति को छोड़कर के दूसरे के पास में जाना यह बहुत ही निंदनीय है। अस्वर्ग्यम स्वर्ग से भ्रष्ट कर देने वाला और फल्गु कृष्ण और इस जगत में बड़ा भयानक है, एक दूसरे को मरवा भी देते हैं, जान से मार डालते भी हैं। अभी कल परसों के ये पेपर में देखा था एक लड़की अपने किसी से प्यार करे थे, पिता ने आकर के लड़की को काट दिया, उनको भी काट दिया, उनके बच्चों को भी काट दिया। इस तरह से भयानक भी है जुगुप्सित। परीक्षित महाराज जी ने भी कृष्ण बोला है आप्त कामो जदुपति कृतमान वही जुगुप्सितम। कृष्ण स्वयं भगवान होकर के धर्म रक्षक होकर के धर्म के वक्ता होकर के और रक्षक होने के नाते मैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आता हूँ ऐसा जुगुप्सित कर्म क्यों किया? यदि जुगुप्सित नहीं होता तो क्यों कहते? जुगुप्सित मैंने निंदनी, इसके द्वारा भी औपपत्य का दोष है, इसलिए औपपत्य गोपियों में नहीं होता। जी गोस्वामी जी का गोपियों के साथ में कृष्ण का निम्न दाम्पत्य है। गौतमीय तंत्र में भी गोपियों के पति कृष्ण बतलाए गए हैं। अनेक जन्म सिद्धानाम गोपी नाम पतिरेव होगा, उसमें भी बतलाया गया। भागवत में भी बता गया गोपी नाम तक पति नाम च सर्वेशाम देही नाम जो अंतश्चरति सो अध्यक्ष एसकृण ने देह भाग पंचाध्यायी के अंत में कहा गया गोपियों के तत्पतियों के भी सबके ये पति हैं, अंत और बाहर सब जगह विचरण करने वाले हैं। गोपाल तापनी में भी स्वामी बतलाया गया है कृष्ण को लक्ष्मी के पति हो सकते हैं, उनके उपपति नहीं होते, गोपियां लक्ष्मी हैं। क्या है चिंतामणि प्रकर सदम कल्प वृक्ष लक्षा भृतेशुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सिद्यमान गोविंदमादि पुरुषम। और भी बतलाए हैं ये सब कृष्ण की अपनी शक्ति है। आनंद की मैं रस प्रतिभाविता निज रूप तय मैंने जैसे कृष्ण की आनंद में है उनकी ये शक्ति है। पति का भाव कहते हैं कि यदि समर्था रति है उसमें भी पति और पत्नी का भाव है और ये महामादन अवस्था तक चली जाती है, फिर बारणता इत्यादि और दुर्लभता इत्यादि भक्ति का हेतु नहीं है। समर्थारति में निवारण नहीं होने से भी श्रृंगारस की जथेष पुष्टि होती है, इसके लिए जरूरत नहीं है। अंत में उन्होंने लिखा शिक्षा लिखितम किंचित किंचित अर्ध परीक्षया, कुछ हमने स्वयं लिखा है अपनी इच्छा से और कुछ लिखा दूसरों की इच्छा से, जिसमें प्रारंभ और अंत में संगति नहीं है वो तो परीक्षा से समझो और जिसमें संगति है परस्पर उसको समझो जो मैंने लिखा। संगति मैंने क्या? संगति मैंने संबंध युक्त होना चाहिए, दो बातें, ऐसा नहीं कि बीच में गड़बड़ हो जाए, दोनों में संगति होना चाहिए। एक जगह पिताजी को पिताजी कहा गया और दूसरे में उनको कह दिया गया पितामह, तो संगति रही नहीं, इसलिए हमने जो कुछ लिखा उसमें संगति रहेगी और जो दूसरे की इच्छा से रहे लिखा है मैंने उसमें असंगति देखना उसको छोड़ दें, वो हमारा विचार है। इसलिए स्वकीय को जहां पर उन्होंने लिखा है उसको समझ लीजिए उसमें संगति नहीं है और परकीय वाले में संगति है पूर्वापर में, इसलिए उसको कहा। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपना विचार दिए हैं। बहुत लंबा है किंतु बहुत ही अच्छा है, हम उसको दूसरे कल उसको पूरा बतलाएंगे। और आज हम उसको बतला रहे हैं, हमारे गुरु जी ने करीब करीब 150-200 वर्ष पहले एक बहुत भारी नवद्वीप में सभा हुई थी। उस सभा में उन्होंने एक विचार पत्र प्रस्तुत किया था, यही सब प्रश्न उठे थे, बड़ा भारी तर्क वितर्क हो रहा था। एक बड़े भारी विद्वान थे गौड़िया वैष्णवों के, तो उन्होंने जो विचार करके पक्ष और विपक्ष की बातें को सुना, तो उन्होंने अपना विचार दिया है और उसको हमारे गुरु जी ने भी गौड़िया पत्रिका में अचिंत भेदाभेद उसमें उन्होंने उद्धृत किया है। जिसको मीमांसा पत्र कहते हैं, उनका नाम था परमानंद पुरी गौर गोविंदानंद भागवत स्वामी, गौर गोविंदानंद वो भी सन्यासी थे। लोग कहते हैं कि गौड़िया वैष्णव में सन्यासी नहीं होते थे, किंतु वो सन्यासी थे, उनको सभी लोग मानते थे। तो उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने लिखा है, संस्कृत में है, उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं, आप लोग उसको समझेंगे। आज यदि कोई तर्क वितर्क करे तो उसका जवाब भी देंगे इन सब से। संप्रदाय के विचार से संप्रदाय व्यक्ति गुरुदेव से दीक्षा मंत्र लेकर के ग्रहण करके उसी के रूप में संप्रदाय होता है। गुरु जी यदि गौड़िया वैष्णव है तो शिष्य क्या होगा, निम्बार्क हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव से मंत्र लेकर के जो गुरु जी खुद मंत्र जपते हैं और उस मंत्र को शिष्य को देते हैं, तो शिष्य भी उसी संप्रदाय का होता है। पहला तो उन्होंने ये दिया। दूसरा, सुधी संप्रदाय बन शिष्ट परंपरा आचार्य उपदेश पद को ही संप्रदाय कहा। सुधी संप्रदायवादी जो हैं, सांप्रदायिक वैष्णव शुद्ध वैष्णव शिष्ट परंपरा ब्रह्मा जी से लेकर के लक्ष्मी जी से लिया, शंकर जी से लिया अथवा सनत, ये लोग शिष्ट हैं। इन लोगों से लेकर के परंपरा चलते हैं अनादि काल से, उसी पद को संप्रदाय कहते। संप्रदाय किसको कहते हैं, सम सम्यक रूपेण प्रदाय, प्रदाय माने क्या, कृष्ण की भक्ति को जो नियम के अनुसार में प्रदान करती है उसको कहते हैं संप्रदाय। कृष्ण की भक्ति नहीं देती वो संप्रदाय नहीं। सांप्रदायिक माने ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब संप्रदाय नहीं है, इसे संप्रदाय कहते हैं। कृष्ण के देने वाले, कृष्ण की भक्ति को देने वाले का नाम संप्रदाय नहीं है, और उनको भक्ति हो जाएगी कदापि नहीं। जो संप्रदाय के बाहर से मंत्र लेते हैं, जैसे आजकल दिल्ली में बाल कृष्ण या कौन कौन सब हैं, ये जगत गुरु कौन है, यहाँ पर मथुरा में है गुरु भगवान का ही नाम है जय गुरु, इनका संप्रदाय इत्यादि से कोई संपर्क नहीं है, न वेद मानते हैं, न भागवत मानते हैं, न गीता मानते हैं, न कुछ। गुरु अल्लाह का नाम है बस, परमात्मा नाम है, अल्लाह का नाम है। कोई भी विचार की जरूरत है, अराजनीति का अखाड़ा है ये सब, अर्थ रोजगार का एक है, कोई सांप्रदायिक भावना नहीं। सांप्रदायिक माने भगवान से तो कोई संबंध ही नहीं है, खाओ पियो मौज करो बस यही। हाँ, अब मथुरा में बाजार में
पढ़े लिखे डाक पहनते
हैं, अब डाक का दाम बहुत अधिक हो गया है। हमना शिष्य किसको कहते हैं, अमनाय को जो ग्रहण करते हैं, गुरु परंपरा की धारा को जो ग्रहण करते हैं। गुरु परंपरा से जिसका संबंध नहीं है वो शिष्य नहीं है। शिष्य कौन है, गुरु परंपरा धारा। परंपरा योग नहीं रहने से केवल गुरु हैं, किंतु गुरु का गुरु, उनका गुरु, उनका गुरु, नित्य काल का नहीं है तो उनसे कोई संबंध नहीं है भगवत धर्म का, ये परंपरा का है। गुरु को मानेंगे और कोई नहीं, हम गुरुदेव के बात छोड़ करके और किसी की बात नहीं मानते। परम गुरु भी होंगे उनका नहीं मानेंगे, परस्पर गुरु की भी बात नहीं, तो क्या समझे जो नास्तिक है। अवैष्णवों के द्वारा जो गुरु परंपरा को नहीं मानते उनके द्वारा जो मंत्र दिए लिए जाते हैं वो गुरु और चेला दोनों नरक में जाएंगे, उसे भगवत परंपरा की सिद्धि नहीं। शिष्ट अनुशिष्ट परंपरा की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान की निश्वास से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है, उसको जो मानते हैं वो शिष्ट परंपरा में, उसको जो नहीं मानते वो शिष्ट परंपरा में नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य को और मध्वाचार्य को ब्रह्मा जी से जोड़ करके ब्रह्म माधव गौड़ीय दूसरा संप्रदाय लक्ष्मी जी से रामानुज, रामानुज से अब चल रहा है श्री संप्रदाय। तीसरा रुद्र जी से भगवत भक्त हैं, रुद्र जी से चला, रुद्र भी वेद मानते हैं और रुद्र से बाद में कौन आए, नहीं विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी से वल्लभाचार्य इत्यादि, और एक आया सनत नंदन सनत कुमार, ये वेदों के ही मानने वाले हैं, उनके अनुगत वाले लोग निम्बादित्य की परंपरा में जो चलते हैं वो इनकी परंपरा में आने वाले लोग वैष्णव हैं। ये सब शिष्ट परंपराएं हैं, ये सर्वमान्य है, ये एक एक पॉइंट एक एक श्लोक में दे रहे हैं। समस्त जगत के गुरु चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए ईश्वर पूरी बात को गुरु के रूप में वर्णन किया है, जैसे कृष्ण जगत स्वयं ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं, तो भी संदीपनी जी को और इधर में सांडिल्य ऋषि इत्यादि को अपना गुरु बनाया। रामचंद्र जी भी स्वयं भगवान हैं किंतु उन्होंने वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को अपना किसी न किसी रूप में गुरु बनाया। चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण देश में जाने पर आंशिक रूप में सत्यवादी आचार्यों के साथ में जो उनका बातचीत हुआ उसमें उनका कुछ अंशों का खंडन किया है। जैसे पुत्र किसी विषय में कोई बातचीत हुई, कोई बिजनेस चल रहा है उसमें पिता और पुत्र में किसी में मतभेद हो गया, तो मतभेद हो गया इसका मतलब जैसे पिता का पुत्र ही नहीं है ये इसको मान लिया जाए, ऐसा नहीं, बिजनेस के संबंध में कुछ मतभेद हुआ इसलिए अपने बाप को भी अस्वीकार कर देगा यह बात नहीं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने आंशिक रूप में तदानीतन काल में तत्ववादियों में जो दोष आए गए थे उनका कुछ खंडन किया। इसका मतलब नहीं है ये गुरु परंपरा से मध्वाचार्य को भी समाप्त, ऐसा नहीं, आंशिक रूप में बोध हो सकता है, मतभेद तो भाइयों में भी होता है, एक पिता के होने वाले स्त्री से भी हो जाता है, पति से भी हो जाता है, पिता से भी हो जाता है, उसी तरह से मतभेद थोड़ा सा होना ही ये यथेष्ट नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे शिवास आचार्य, शिवास पंडित, वो तो कृष्ण की उपासना नहीं करते, वो किसकी उपासना करते हैं, नारायण की, नारायण की उपासना, अनुपम जी ये भी रामचंद्र की उपासना करते थे, मुरारी जी हनुमान के अवतार रामचंद्र जी की उपासना, सभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, क्यों केवल उपासना का थोड़ा सा भी भेद नहीं होने से ही अलग हो जाएगा संप्रदाय, ऐसा नहीं, ये मूल चीज नहीं है। महाप्रभु जी को क्यों उन्होंने ग्रहण किया, ये सब लोग महाप्रभु जी को ग्रहण किया इसलिए सब लोग गौड़ीय वैष्णव, थोड़ा सा कुछ भेद होने पर भी किसी ने लाल टोपी पहनी और किसी ने काली टोपी पहनी, किसी ने सफेद कपड़ा पहना, किसी ने लाल कपड़ा, इसलिए अलग अलग हो जाएंगे। संन्यास हम लोग ले लिए इसलिए गौड़ीय वैष्णव नहीं है, क्योंकि रूप सनातन जी वो तो सफेद कपड़ा पहनते थे तो हम लोग कैसे उनके हो जाए। और महाप्रभु जी लाल कपड़ा पहनते थे, सन्यासी थे, और द्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु सन्यासी थे, संत दामोदर सन्यासी थे, तो रूप सनातन उनके कैसे हो सकते हैं, ये लोग भी गौड़ीय वैष्णव नहीं थे। ये सब याद रखना सब, मैं तो ऐसे तुम लोगों को बहका दें। जलाल कपड़ा तो ये लोग नहीं लेते हैं, और जिन लोगों में बस ये लोग वो तिलक लगाते हैं गोपी चंदन, और हम लोग लगाते हैं काली मिट्टी जमुना या वहां से राधा, इसलिए ये गौड़ीय वैष्णव है और लाल कपड़ा पहनते हैं। तो ये चैतन्य चैतामित से इस चीज को निकाल दिया जाए, ये शिवा विप्र शिवान्यासी सूत्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता तत्पर्य निकाल दिया जाए, ये सब ले सकते हैं। व्यभिचारी लोग भी ले में, और पतिता वो जो ये थी ना वैश्या वो भी वैष्णव हो सकती है गौड़ी, किंतु जो सन्यास लेगा वो नहीं होगा, और लाल कपड़ा वाला अद्भुत विचार, गलत विचार। कुछ कुछ मतांतर हो सकता, कहते हैं कि संप्रदाय में दीक्षा लेने पर जो ग्रहण करते हैं उनमें कुछ कुछ मतमतांतर हो सकता है, तो मतमतांतर होने से ही वो संप्रदाय में अलग अलग हो गया, ऐसी बात नहीं, वो शाखा भेद होगा। क्या शाखा? जैसे रामानंदी संप्रदाय रामानुज के अंतर्गत है, किंतु सब प्रकार से रामानंदी लोग रामानुज को ग्रहण नहीं करते, रामानुज वाले नारायण की और लक्ष्मी की उपासना करते हैं, और रामानंदी रामचंद्र जी, इसलिए इनको भी अलग अलग मान लो, नहीं, एक शाखा है। मध्वाचार्य नर्तक गोपाल को मानते हैं, और हम लोग कृष्ण को मानते हैं, वो भी परकीय भाव से, तो इसलिए हम लोग अलग हैं, नहीं, शाखा शाखा भेद संप्रदाय भेद नहीं होगा। गौड़ीय भी तत्ववादी मध्व के ही अंतर्गत हैं, वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं, मुख्य तत्वादू रामानुज मध्वाचार्य हैं, उनके राजेंद्र इत्यादि शिष्य हैं, उन लोगों का कोई मतभेद नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनसे मतभेद कुछ हो सकता है। हम लोगों में भी लोग कहते हैं कि चैतन्य चैतामृत में चतुर्थ अध्याय नहीं पढ़ो, और श्रीमद् भागवत में कभी भी राजपंच अध्याय इत्यादि गोपी गीत पूर्वराग वाला बंसी वेणुगीत इत्यादि मत पढ़ो, कोई कहते हैं, इसलिए हमारा उनका संप्रदाय में भेद हो गया, वो गौड़ी वैष्णव नहीं है तो हम ही लोग वैष्णव नहीं, ऐसी बात। वो कहते हैं इसका कारण है अपक्व अवस्था में मत देखो, परिपक्व अवस्था में देखो, बस इतना ही भेद है और कुछ भेद नहीं, ऐसे ही। कहते हैं साध्य और साधन का विचार लेकर के सब संप्रदाय का विचार होता है, तो रामानुज मध्वाचार्य और हम लोगों में भी साध्य और साधन का कुछ है, एक भाव है। मध्व में जो मुक्ति है हमारे में भी वही है, क्या मुक्ति है? विष्णु लाभ मुक्ति, कृष्ण को विष्णु भागवत में कहा गया है, क्या है? इदं च विष्णु रजबधु भी इदं च विष्णु इत्यादि में कृष्ण को विष्णु का, इसलिए वो कृष्ण जो विष्णु है उनके चरण कमलों की प्राप्ति ही हमारा साध्य है, इसमें क्या गलत हुआ? कोई गलत कितना बन गया? मध्यमत में
महाभारत को केवल प्रमाण मानते हैं, यह बात गलत है। कहीं भी किसी के ग्रंथों में, मध्वाचार्य के ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। ये लोग भूत बोलते हैं।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो महाबदन्नाय कृष्णदायते कृष्णाय कृष्ण।
इसके द्वारा द्वारका पति द्वारकाधीश कैसे उनके इष्टदेव प्रमाणित होंगे? यदि नर्तक गोपाल हैं ये तो ब्रज के हैं, इसलिए द्वारकाधीश को ये सेवा नहीं मानते। कोई निर्णय तो ऐसा नहीं कर सकता है ये द्वारकाधीश के इनके इष्टदेव थे द्वारकाधीश। यदि द्वारकाधीश को भी मान लो तो हर्ज क्या है? द्वारकाधीश और कृष्ण तो तत्वतः एक ही हैं, इसमें क्या हर्ज हो गया? नंदनंदन कृष्ण ही वही तो द्वारकाधीश है, स्वरूपतः दोनों में कोई भेद नहीं है। ये तो समस्त शास्त्र में ऐसा कहा गया। कृष्ण लीला भेद से वृंदावन में परिपूर्ण है और